आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
SBS हिंदी सेवा के सभी श्रोताओं को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं सहित नई दिल्ली से मनन कुमार का नमस्कार। पेश हैं भारत के समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रवैये से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मची भारी उथल पुथल के बीच भारत और यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड पैक्ट यानी मुक्त व्यापार समझौता करने जा रहे हैं। यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लायन और यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा आज गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपियन काउंसिल और कमीशन के दोनों बड़े नेता इस दौरान भारत EU समिट को को-चेयर करेंगे। भारत के लिए एक बड़ी चिंता नॉन टैरिफ रुकावटों मसलन स्टील एल्यूमिनियम और सीमेंट जैसे सामानों के इम्पोर्ट पर EU की नई कार्बन लेवी को लेकर है, जिसे हाल ही में 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। लेकिन साथ ही इस दौरे से भारत के ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्सटाइल फार्मास्यूटिकल्स संभावित इंडिया EU FTA के मुख्य लाभार्थी बनकर उभर सकते हैं। EU भारत के बीच समझौते का असर संयुक्त राज्य अमेरिका पर भी पड़ता दिख रहा है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने एक साक्षात्कार में कहा, चूंकि भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदना काफी कम कर दिया है, इसलिए ट्रंप सरकार भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ में से आधा टैरिफ हटाने पर विचार कर सकती है। श्री बेसेंट ने इसे अमेरिका की बड़ी जीत बताते हुए कहा कि भारत पर लगाया गया 25% टैरिफ काफी असरदार रहा है और इसकी वजह से भारत की रूसी तेल खरीद घट गई है। श्री बेसेंट ने कहा कि यूरोपीय देश भारत पर टैरिफ इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि वे भारत के साथ बड़ा व्यापार समझौता करना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने यूरोप पर आरोप लगाया कि वह भारत से रिफाइंड तेल खरीद कर खुद ही रूस की मदद कर रहा है। EU समझौते की व्यस्तता के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने अपना चुनावी दौर जारी रखते हुए शुक्रवार को तमिलनाडु और केरल का दौरा किया। इन दोनों राज्यों में इसी साल अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव होने हैं। केरल में एक जनसभा में उन्होंने तिरुवनंतपुरम नगर निगम में भाजपा की हालिया जीत की तुलना सन 1987 में अहमदाबाद नगर निगम में मिली पहली जीत से करते हुए इसे केरल में भाजपा की नींव बताया। तमिलनाडु में प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से सत्तारूढ़ DMK के कथित कुशासन से मुक्त कराने की अपील की।
आज तमिलनाडु में एक ऐसी सरकार है जिसे डेमोक्रेसी या अकाउंटेबिलिटी से कोई लेना देना ही नहीं है। DMK सरकार सिर्फ एक परिवार की जी हजूरी में ही लगी हुई है। अगर किसी को DMK में आगे बढ़ना है तो उसके पास सिर्फ 3 या 4 रूट है, डायनेस्टी रूट, करप्शन रूट, एब्यूज विमेन रूट, एब्यूज अवर कल्चर रूट।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और DMK अध्यक्ष M.K. स्टालिन ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला तेज करते हुए चुनावों को आर्य बनाम द्रविड़, संघवाद और तमिल भाषा की अस्मिता की लड़ाई बताया है। सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस उज्जवल भुइया ने कॉलेजियम की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कहा है कि सरकार के खिलाफ फैसला देने वाले न्यायाधीशों का तबादला करना न्यायपालिका की स्वतंत्रता में सीधा हस्तक्षेप है। पुणे के ILS लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल GV पंडित मेमोरियल लेक्चर में उन्होंने कॉलेजियम के फैसलों में कार्यपालिका के असर की खुली स्वीकृति को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया।
Why should a judge be transferred from one high court to another high court merely because he had passed certain inconvenient orders against the government? Does it not affect the independence of the judiciary? Then again, when it is noted in the collegium resolution itself that a particular high court judge who was being transferred to a different high court was subsequently transferred to another high court by modifying the earlier recommendation on reconsideration sought for by the central government? Does it not compromise the integrity of the collegium system?
उनका इशारा हाल ही में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के जस्टिस श्रीधरन का तबादला इलाहाबाद उच्च न्यायालय किए जाने को लेकर था। केंद्र सरकार ने कॉलेजियम को अपने फैसले पर दोबारा विचार करने को कहा था, जिसके बाद कॉलेजियम ने अपना निर्णय बदलते हुए जस्टिस श्रीधरन का तबादला कर दिया था। यह फैसला सुर्खियों में इसलिए भी आया क्योंकि जस्टिस श्रीधरन की पहचान एक स्वतंत्र जज के रूप में रही है। उन्होंने मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के खिलाफ कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई टिप्पणी के मामले में स्वतः संज्ञान लेकर FIR दर्ज कराने का आदेश दिया था। जस्टिस भुइया के इस वक्तव्य ने सर्वोच्च न्यायालय और केंद्र सरकार दोनों को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। एक लंबे अंतराल के बाद उत्तरी भारत के कई क्षेत्रों ने सर्दियों की पहली बारिश और बर्फबारी होने से लोगों, खासकर किसानों ने राहत की सांस ली है। शुक्रवार की रात से दिल्ली NCR समेत कई राज्यों में बारिश होने से बढ़ते प्रदूषण पर भी रोक लगी है। हिमाचल में बर्फबारी से तापमान गिर गया है और 1291 सड़कें बंद हैं। उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट है। मौसम विभाग ने बताया है कि यहाँ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है। रक्षा मंत्रालय के डिफेंस जियोमेट्रिक्स रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने उत्तराखंड में बर्फबारी के कारण 5 जिलों के लिए अगले 24 घंटों में हिमस्खलन का हाई अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 26 जनवरी से दूसरा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे उत्तर भारत के 9 राज्यों में बारिश और पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी हो सकती है। और अब पेश हैं खेल जगत के समाचार। खेलों में राजनीति के दखल के चलते बांग्लादेश T20 विश्व कप से बाहर हो गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बांग्लादेश की जगह T20 विश्व कप में स्कॉटलैंड की टीम को शामिल किया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड मीडिया समिति के अध्यक्ष अमजद हुसैन ने कहा, हमने अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ कोशिश की। हम ICC बोर्ड के फैसले का सम्मान करते हैं और बोर्ड ने बहुमत से फैसला लिया है कि हमारे मैच स्थानांतरित नहीं होंगे। इसके बाद भी हमने अपनी तरफ से कोशिश की और उनसे अपील की। चूंकि वे ऐसा नहीं करेंगे या नहीं करना चाहते, इसलिए हम और कुछ नहीं कर सकते हैं। बांग्लादेश की इस जिद के बीच IPL T20 टूर्नामेंट में ही पड़ गए थे, जब दक्षिणपंथी लोगों के दबाव के चलते BCCI के निर्देश पर शाहरुख खान की कोलकाता नाइट राइडर्स से बांग्लादेश के एकमात्र क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को बाहर निकाल दिया गया था। इस घटना से पैदा हुए आक्रोश को देखते हुए बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए भारत में खेलने से मना कर दिया था। न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ एक दिवसीय श्रृंखला बेशक 2-1 से जीत ली हो, लेकिन 5 मैचों की T20 सीरीज में भारत ने पहले 3 मुकाबले जीतकर अजेय बढ़त बना ली है। असम की राजधानी गुवाहाटी में रविवार को खेले गए तीसरे मैच में भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। न्यूजीलैंड की टीम भारत की पैनी गेंदबाजी से परेशान नजर आई और 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर केवल 153 रन ही बना पाई। केवल ग्लेन फिलिप्स 40 गेंदों पर 48, मार्क चैपमैन 23 गेंदों पर 32 और मिचेल सैंटनर 17 गेंदों पर 27 रन बनाकर कुछ चुनौती दे पाए। शून्य पर संजू सैमसन का विकेट खोने के बावजूद भारत ने धमाकेदार शुरुआत की। दूसरा विकेट 53 रन पर ईशान किशन का गिरा, जिन्होंने 13 गेंदों पर 28 रन बनाए। अभिषेक शर्मा ने निर्मम बल्लेबाजी करते हुए मात्र 14 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। दूसरे छोर से कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी धुआंधार बल्लेबाजी की और भारत ने आनन फानन में केवल 10 ओवर में ही 155 रन बना डाले और 8 विकेट से तीसरा मैच जीत लिया। यादव ने मात्र 26 गेंदों पर 57 रन बनाए। जसप्रीत बुमराह को 4 ओवर में केवल 17 रन दे 3 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के पुरस्कार से नवाजा गया। तो ये थे अब तक के समाचार। नमस्कार।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।